नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और सुदृढ़ करने पर चर्चा करेंगे, साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
फिनलैंड के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद डॉक्टर एलेक्जेंडर स्टब की भारत की यह पहली यात्रा है। श्री स्टब आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी श्री स्टब से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति स्टब नई दिल्ली में आज शाम आयोजित होने वाले 11वें रायसीना संवाद 2026 में मुख्य अतिथि और प्रमुख वक्ता होंगे। भारत और फिनलैंड के बीच सौहार्दपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और बहुआयामी संबंध है जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। फिनलैंड यूरोपीय संघ और नॉर्डिक क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। पिछले महीने एआई इंपैक्ट समिट के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेट्री ओर्पो भी भारत की यात्रा पर आए थे। राष्ट्रपति स्टब की यह यात्रा विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने तथा परस्पर संबंधों को बढ़ाने की दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। फिनलैंड के राष्ट्रपति मुंबई का भी दौरा करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भारत के प्रमुख भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्रीय सम्मेलन रायसीना संवाद का 11वां संस्करण आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय सम्मेलन में वैश्विक नेता, नीति निर्माता, विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और रणनीतिक सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। वर्ष 2026 का विषय है संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति। 10 राज्यों में 37 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। उम्मीदवार 9 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को होगा और परिणाम उसी दिन घोषित किए जाएंगे। नेपाल में संसदीय चुनावों के लिए मतदान जारी है। ये चुनाव पिछले वर्ष सितंबर में युवाओं के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के बाद पहला आम चुनाव है। उन प्रदर्शनों में 77 लोगों की मौत हुई थी और सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज हो गया है। इसराइली रक्षा बलों ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल बेड़े से जुड़े कई ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया है। इनमें मिसाइल लॉन्चर और वायु रक्षा प्रणाली शामिल है जो इसराइली वायुसेना विमानों के लिए खतरा मानी जा रही थी। इस बीच अमरीकी वायुसेना ईरान पर लगातार भारी हवाई हमले कर रही है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि उनके बलों ने 20 से अधिक ईरानी जहाजों को नष्ट कर दिया है जिसमें सोलेमानी श्रेणी का युद्धपोत भी शामिल है। अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पहली बार लंबी दूरी की सटीक मारक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान का समर्थन किया है। कल रात सीनेटरों ने कांग्रेस की अनुमति के बिना सैन्य अभियानों को रोकने के उद्देश्य से लाए गए द्विदलीय प्रस्ताव को रोकने के लिए मतदान किया। सीनेट ने 47 के मुकाबले 53 मतों से प्रस्ताव को आगे न बढ़ाने का फैसला किया जो मुख्य रूप से पार्टी लाइन के अनुरूप था। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात के बीच अधिक मांग को देखते हुए टोरंटो, फ्रैंकफर्ट और पेरिस चार्ल्स डी गॉल के लिए अतिरिक्त क्षमता वाली उड़ानें संचालित करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एयर इंडिया ने बताया कि आज से 11 मार्च तक दिल्ली और टोरंटो के बीच 3 अतिरिक्त उड़ानें संचालित होंगी। 7 मार्च से 10 मार्च तक दिल्ली और फ्रैंकफर्ट के बीच 3 उड़ानें तथा दिल्ली और पेरिस के बीच 1 उड़ान अतिरिक्त चलेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बेलगावी जिले के श्री वीरभद्रेश्वर मंदिर में राजगोपुरम कलशारोहण और महाकुंभाभिषेक समारोह के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में हुए विरोध प्रदर्शन मामले में भारतीय युवा कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने उनकी जमानत याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 मार्च की तारीख तय की है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज कोलकाता में प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करेगा। इससे पहले 2 मार्च को जिला निर्वाचन अधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और केंद्रीय बलों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की थी। वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का एक दल 8 मार्च को कोलकाता पहुंचेगा। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे से होगा। इससे पहले सेमीफाइनल में कल रात न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।